ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ज्ञानतिमिरान्धश चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तराधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान के जो पवित्र नाम की जो महिमा है उसके बारे में। तो आप सब कई दिनों से भगवान के नाम की महिमा श्रवण करते आए हैं, तो मैं उन्हीं नाम महिमा को जो भक्तों ने चर्चा की है कई दिनों से उसको रिपीटेडली फिर से वर्णित करूंगा। तो चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज कहते हैं, नाम विनु कलि काले नाहि आर धर्म सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। तो यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों का अत्यधिक अध्ययन करता है परंतु इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, कौन सा निष्कर्ष? कि भगवान का पवित्र नाम ही भगवत प्राप्ति के लिए महासाधन है, तो उसका जो शास्त्र अध्ययन भी निरर्थक है, श्रम एव ही केवलम। तो इसलिए कलयुग का जो परम धर्म है, महासाधन है। साधन कई होते हैं, साधन मतलब जिसके द्वारा हम साध्य की प्राप्ति करते हैं। साध्य का अर्थ है लक्ष्य। अभी यहाँ से हमें दिल्ली जाना है तो हम साधन कार यूज करते हैं, साध्य है दिल्ली पहुंचते हैं। तो उसी प्रकार से भगवत प्राप्ति करने की हमारी यदि रियली परम इच्छा है तो हमें फिर किसी साधन को स्वीकार करना पड़ेगा। तो कई सारे साधनों को व्यक्ति स्वीकार करता है केवल भक्ति में आने के बाद भी, लेकिन जो प्रमुख साधन है जिसे महासाधन कहा गया है या एक्सप्रेस वे, हाँ या हाईवे है, भगवत प्राप्ति का हाईवे क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, बल्कि कलयुग के जीवों का भाग्य क्या है, भगवान ने भगवत गीता दी तो भगवान के शब्द हैं, उससे भी आगे श्रीमद् भागवतम है। भागवतम क्या है? भगवान के बारे में उनके नरेशंस है, उनके जो लीलाओं का, उनके चरित्र का वर्णन है श्रीमद् भागवतम। बल्कि उससे और एक्स्ट्रा चीज है, वो है चैतन्य चरितामृत। उसकी विशेषता क्या है कि हम बहुत अधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस युग में 450 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे और महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। तो ऐसे कृष्ण क्या सोचते हैं वो जानने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, इतने भाग्यशाली है। बाकी युगों में ये सौभाग्य नहीं है। बाकी युगों में भगवान के शब्दों को जानता है, या फिर भगवान की लीला गाथा को समझता है, लेकिन इस युग में हम ये भी जानते हैं कि कृष्णा की सोच क्या है, थॉट्स क्या है, और वो थॉट्स या सोच या विचार भगवान चैतन्य चरितामृत में व्यक्त करते हैं। और भगवान चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ये अपने विचार व्यक्त करते हैं, क्योंकि भगवान जब द्वापर युग के अंत में इस संसार को छोड़कर चले गए, चले जाने के बाद कृष्ण शांत नहीं रहे अपने आध्यात्मिक धाम में, उनका मन दौड़ने लगा, सोचने लगा भी हम भी यहां से वापस जाते घर हम शांत नहीं रहते, घर जाने के उपरांत हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान अपने धाम वापस गए, जाने के बाद उनको विचार आया, अरे लंबा समय बीता है, क्या नहीं किया मैंने, मैंने ऐसे भगवत भक्ति का दान नहीं किया जिस जो भक्ति मुझे पूर्णता वश में कर सकती है, यह सर्वोत्कृष्ट भक्ति है, और वो क्या है, ब्रज भक्ति। बल्कि ध्रुव, प्रह्लाद, नारद, शुका, इनसे भी इनका जो भगवत भक्ति है उससे कई गुना श्रेष्ठतम है। किनका भगवत भक्ति, वृंदावन के निवासियों का, वृंदावन के वासियों का। तो भगवान ने सोचा कि मैंने ये ब्रज भक्ति का दान नहीं किया है, अचिरे न, बहुत लंबा समय हो गया है। तो फिर वही भगवान सोच रहे हैं, उनकी सोच हमें पता चलती है चैतन्य चरितामृत के माध्यम से। और वही भगवान कृष्ण जो सोच रहे थे, भगवान ने सोचा ये भगवत भक्ति जो सर्वोत्कृष्ट है ये मेरे अलावा कोई दे नहीं सकता, आमा बिना ब्रज प्रेम अन्य नारे देते, मेरे अलावा वृंदावन की जो भावना है कृष्ण के प्रति सेवा की वो कोई और प्रदान नहीं कर सकता। तो भगवान कहते मुझे जाना होगा, किसने सोचा, चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है। तो वही चैतन्य महाप्रभु ने सोचा मुझे जाना होगा तो खाली हाथ नहीं जाना होगा, हाँ ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं तो हम अपना पूरा बैग भर के निकलते हैं, हाँ पूरी तैयारी होती है एक हफ्ता पहले कि मुझे अगले हफ्ते निकलना है। तो कृष्ण की भी यात्रा कहाँ से थी, गोलोक से भूलोक तक, भगवान गोलोक वृंदावन से अभी यहाँ गोलोक से भूलोक आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ कैरी करना होगा, कुछ अपने साथ लेके जाना होगा। तो भगवान क्या लेके आए होंगे अपने साथ, हाँ हम सोचते हैं ना, हम जब यात्रा में जाते हैं तो आजकल तो हम अलग अलग कार्ड्स लेके जाते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और उसमें भी धन प्रमुख होता है। ट्रैवलिंग में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज हो या ना हो, पैसे जेब में होने चाहिए, फिर हमें कोई चिंता नहीं, हम कहाँ भी रह सकते हैं, घूम सकते हैं और अपना उदर निर्वाह कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण ने सोचा कि मुझे भी क्या करना होगा, धन लेकर निकलना पड़ेगा। हमें भगवान के पास क्या धन है, कृष्ण थोड़ी डॉलर, रुपीस, दिनार ये सब लेके घूमेंगे। भगवान ने सोचा कि मैं देखता हूँ मेरे गोलोक के तिजोरी में मैंने क्या रखा है, हाँ वो धन, तो वो धन वो लेकर निकलते हैं। और वो कौन सा धन था, उसी को नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है, गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। गोलोक में प्रेम धन है, बल्कि हम किसी के द्वारा कोई भी कार्य करवा सकते हैं, किससे, प्रेम से कर सकते कि नहीं। आप उसको, प्रभुपाद ने कहा मैं ये जो मंदिर में रहते हैं, ये जो इतने सारे भक्त बनाए हैं, और वो लोग अपना सब कुछ छोड़ के आ गए, और उनको हम सैलरी भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन दिन रात वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते क्यों, क्योंकि ये प्रेम का एक लक्षण है, प्रेम के द्वारा आप कुछ भी करा सकते हो। तो उसी प्रकार से भगवान चैतन्य ने भी सोचा, हाँ नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों में हम समझते हैं कि वो क्या लेके आ गए अपने साथ, गोलोक का जो प्रेम धन है, और वो प्रेम धन क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी को भक्ति विनोद ठाकुर अपने ग्रंथ हरि नाम चिंतामणि में कहते हैं, नाम सम वस्तु नाएव संसारे, नाम से परम धन कृष्ण भंडारे। कि नाम के समान कोई और वस्तु नहीं। किसका नाम प्रश्न उठता है, सबसे पहले हमें किसी के नाम की चिंता है तो किसके नाम की चिंता है, अपने नाम की। जब करते समय भी अपने नाम की चिंता रहती कि मैं, मुझे सब देख रहे कैसे मैं जप कर रहा हूं, प्रभु जी कैसे जप कर रहे हैं, तो किसकी चिंता है नाम करते समय, अपने नाम की चिंता है। तो बल्कि वास्तव में शास्त्र कहते हैं कि जो नाम है कलयुग में, हाँ वो किसका नाम, श्री हरि कृष्ण का परम नाम, किसी देवी देवताओं का नाम नहीं। प्रभुपद कहते हैं एक लेक्चर में, काली काली कीर्तन नहीं, किसके नामों का कीर्तन नहीं, काली काली का नहीं, प्रभुपद कहते हैं हरे कृष्ण कीर्तन। हाँ तो इस प्रकार से, इसलिए प्रहलाद महाराज ने बहुत सरल कर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, विष्णु श्री हरि कृष्ण का पवित्र नाम। तो इसलिए नाम सम वस्तु ना ये भव संसारे, नाम के समान ये जगत में कोई और वस्तु नहीं है। तो दो चीजें हैं, या तो हम अपने नाम के पीछे भागे उसको उन्नत उज्जवल कराने के लिए, या फिर कृष्ण का नाम अपने जीवन में अपना धन बना ले। इस संसार में बचपन से लेकर अंतिम सांस तक हम केवल अपने नाम के लिए तड़पते रहते हैं। बच्चों को भी कहते तुम मेरा नाम मत खराब करना, स्कूल में पड़ोसियों के साथ संबंधियों में, हाँ चिंता बचपन से हमें अपने नाम की है। बच्चे को भी अधिक से अधिक यही शिक्षा देते हैं कि तुम्हें अपना नाम, तुम्हारा नाम उज्जवल कैसे करना है। हाँ लेकिन वास्तव में हमें किसी के नाम की चिंता करनी है तो किसका नाम, कृष्ण का नाम। क्योंकि ये सारे हमारे नाम आज है कल नहीं, हाँ लेकिन कृष्ण का नाम क्या है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। नाम तत्व की व्याख्या रूप गोस्वामी श्लोक से करते हैं, वो कहते हैं ये श्री नाम कोई सर्वसाधारण नाम नहीं है। हम अपना नाम सोचे तो ये भौतिक है, अपना नाम कितना बड़ा करने का प्रयास करें वो एक ना एक दिन छोटा हो जाता है। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। वो कहते नाम कैसे है, चिंतामणि के समान है। हमें तो मणि की चिंता बहुत है लेकिन नाम तो इससे परे है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं नाम बिना किछु नाही कहार चौदह भुवन माझे। हाँ चौदह भुवन, इस भौतिक जगत को, भौतिक जगत में चौदह भुवन है, चौदह लोक है। इसमें वो कहते हैं नाम के बिना कोई और मधुरतम या लेने योग्य, कलेक्ट करने योग्य कोई और दूसरी चीज नहीं है श्री नाम के अलावा। चैतन्य रस विग्रह, इसका विग्रह कैसा है, रस स्वरूप है। और पूर्ण शुद्ध, भगवान का नाम पूर्ण रूपेण शुद्ध है। हमारे नाम में और हम में बहुत अधिक अंतर है। हाँ डिवोटीज कहते हैं कि एक व्यक्ति कार से जा रहा था और सिग्नल में कोई भिखारी आ गया और उन्होंने कार का दरवाजा खटखटाया तो एक भक्त ने पूछा आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा थोड़ा भिक्षा दे ही, भिक्षा दे दो कुछ तो दान। उन्होंने कहा मेरा नाम लक्ष्मीपति है। तो डिवोटी सोचा इसका नाम लक्ष्मीपति है तो यहाँ रोड में भिक्षा भी मांगना है। उसके नाम में और उस व्यक्ति में क्या है, इतना लंबा अंतर है। लेकिन कृष्ण के नाम और कृष्ण में अंतर नहीं है, एक ही है। इसलिए कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षति इति कृष्ण, जो आकृष्ट करते हैं सब जीवों को, चाहे कोई धर्म वर्ण रंग आयु लिंग भेद कुछ भी हो, भगवान का नाम उस व्यक्ति को आकृष्ट करता है। आज का दिन है श्रील प्रभुपाद अमेरिका में पहुंचे थे आज के दिन बोस्टन में अराइवल, और क्या लेकर पहुंचे थे प्रभुपाद अपने साथ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जब गए तो प्रभुपाद के पास दो ही चीजें थी, कृष्ण नाम और श्रीमद् भागवतम का संदेश। तो ये दो चीजें एक भक्त को बहुत अपने करीब का बनाना चाहिए। ये दो चीजें साक्षात कृष्ण है। कृष्णे सदा पगते धर्म ज्ञाना विदिशः, हाँ, कृष्णा जब द्वापर युग के अंत में धर्म ज्ञान आदि के साथ इस संसार से चले जाते हैं तो आपने आपको श्रीमद् भागवतम के रूप में रखते हैं। तो किसी से अत्यधिक प्रेम करना है, किसी से अत्यधिक आसक्ति रखनी है तो इन दो चीजों से, एक है श्रीमद् भागवतम और दूसरा है कृष्ण नाम। जैसे कहा है कि ये जो हरि नाम के अलावा आपको कोई आवश्यकता नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा किसी और नाम का उच्चारण करने की। हाँ, तद रसामृत तृप्तश्च, कहते भागवतम के 12वें स्कंद में कि व्यक्ति को किसी और ग्रंथ का स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है श्रीमद् भागवतम के अलावा। और वास्तव में भागवतम कृष्ण के नाम रूप गुण लीला से परिपूर्ण है, और भागवतम के शुरुआत में मध्य में और अंत में किसी चीज का महिमा का वर्णन किया है तो कृष्ण के नाम का। भागवतम के प्रथम स्कंद में वही वर्णन आता है कि यद्यपि भेति स्वयं भयम्, कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि जो भय है वो कांपने लगता है, सोचो। और मध्य में वर्णन किया है आजा मिल का इतना बड़ा उपाख्यान दे दिया, आजा और मिल, हम माया से मिलना चाहते हैं लेकिन आजा मिल ने मृत्यु के समय में कृष्ण के नामों का उच्चारण किया और सरलता से भगवत प्राप्ति की। इतना कुछ हमने सुना लेकिन फिर भी मेरे हृदय में प्रकाश प्राप्त नहीं हुआ या परिवर्तन नहीं हो रहा है, भगवान का नाम ले लेकर माला का रंग बदल गया। आपको याद है दीक्षा के समय माला का रंग अलग होता है, जिनके दीक्षा हो गई ना उनको पूछिए प्रभु जी कितने सालों से हरि नाम ले रहे हैं, गुरुदेव ने माला दी बिल्कुल वाइट शुभ्र और बड़ी नीट एंड क्लीन थी, लेकिन अभी 10-15 साल हो गए उसी पे जप करते करते उसका रंग बदल गया, लेकिन मेरे हृदय का रंग बदल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? हरि नाम निकल नहीं रहा है उचित ढंग से, हाँ, क्योंकि उसमें सर्वाधिक रूप से असावधानी है। तो इस प्रकार से भगवान का जो ये नाम है, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि रोज किसी न किसी भक्त से सुनो, कुछ भी काम नहीं है फोन कर दो किसी को, प्रभु जी थोड़ा हरि नाम के बारे में बताओ। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं रोज हरि नाम की महिमा, नाम कैसे उच्चारण करना चाहिए उसके बारे में सुनना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, बोलना चाहिए। तो हम तो कितना अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन भक्तों से हम बात करें प्रभु जी बहुत दिन हो गया हरि नाम के बारे में, थोड़ा सा मुझे कुछ एक क्लू बताओ कैसे मेरा नाम जब मैं बढ़ा सकता हूं। हाँ, तो इस प्रकार से हमें प्रयासरत होना चाहिए और केवल योजनाएं बनानी चाहिए कि कैसे मेरा नाम जब अधिक सुधर सकता है, कैसे भगवान के नामों के प्रति मेरा जो आकर्षण है वो प्रगाढ़ हो सकता है। क्योंकि भक्ति में भगवत नाम की चर्चा ये प्रमुख विषय है, प्रमुख टॉपिक है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि जैसे हम अपना बुखार थर्मामीटर से नापते हैं, मैं बीमार था तो मैं हमेशा थर्मामीटर लेके ट्रैवल करता था, तो हमेशा चेक करता था कि कितना बुखार है। हाँ, कुछ साल पहले तो अभी थर्मामीटर तो हमें आध्यात्मिक गुरु ने दे ही दिया है लेकिन हम अपना बुखार चेक नहीं करते, लेकिन बुखार क्या हो रहा है दिन ब दिन बढ़ रहा है हरि नाम न लेने मात्र से। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि आध्यात्मिक जीवन को नापने का थर्मामीटर क्या है? हरि नाम, कि आपका हरि नाम कैसे हो रहा है,
बल्कि भगवान को कोई और भक्त उतना प्रिय नहीं है जो वो भक्त अधिक प्रिय है जो हरि नाम में डूबा हुआ है। किसमें डूबा हुआ है? कृष्ण के नाम में डूबा हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वः। भगवान कहते हैं मेरा निवास स्थान वैकुंठ आदि में नहीं है। तो कोई कहे कि कृष्णा बताओ बताओ आप कहां रहते हो, भगवान सरलता से बोलते हैं। बल्कि एक्चुअली भक्ति के रहस्य को समझने के लिए सरल हृदय चाहिए। हम मैं अभी वृंदावन से आ रहा था, दो तीन दिन हो गए वृंदावन गए थे, तो वहां बहुत सारा हरिनाम हो रहा था। तो वहां से आते आते सोचा प्रवचन सुनते हुए आना चाहिए कार में, तो चार पांच स्पीकर्स के प्रवचन थे, अलग 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 स्पीकर्स के प्रवचन डाले हुए थे MP3 प्लेयर में। तो सोचा किसका सुनूं प्रवचन, हमें होता है ना अभी चॉइस, इतने सारे स्पीकर्स आ गए किसके बारे में सुने। तो अब तीन चार डिवोटीज थे तो कहते प्रभुजी मुझे उसका सुनना है, दूसरा कहते नहीं उसका, मैंने कहा किसी का नहीं, हम प्रभुपाद का सुनते हैं। तो प्रभुपाद का प्रवचन लगाया, छठी करा क्रॉस किया कल, तो प्रभुपाद बोलने लगे जगन्नाथ रथ यात्रा का वो प्रवचन था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, किसी को पढ़ना आए नहीं आए, कोई शास्त्रों का बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन दे या ना दे, लेकिन एक चीज के लिए वो सहमत हो जाए तो वो सारे जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो हम सारे कान ऐसे बड़े कर दिए। प्रभुपाद ने कहा चाहे वो अनपढ़ हो गवार हो, शास्त्र पढ़े ना पढ़े, कुछ करे ना करे, एक चीज करने के लिए वो सहमत हो जाए। तो हम सारे सोचने लगे क्या बोलेंगे प्रभुपाद आगे। तो प्रभुपाद ने कहा कि वो व्यक्ति सहमत हो जाए एक चीज करने के लिए तो वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है जीवन की, उसको कोई और चीज करने की आवश्यकता नहीं है। और वो क्या बोला प्रभुपाद ने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने सोचा कितनी सारी दुनिया भर की चीजें करते रहते हैं हम, कितने प्लान बनाते हैं, ये भी समझना है वो भी समझना है, उसका भी पूरा अर्थ पता होना चाहिए, लेकिन एक चीज के लिए हम बिल्कुल आलसी है, औदासीन्य है, विक्षेप। हमारे नाम चिंतामणि में तीन असावधानियां बताते हैं भक्तिवरण ठाकुर। तो हमने सोचा कि कितना प्रभुपाद का फेत है हरे नाम में। तो हम भी इतने सालों से आते हैं और इतने सारे ग्रंथों को ऊपर से नीचे करते हैं, श्लोकों को रट रट के गला अवरुद्ध हो जाता है, लेकिन हमारा अनुराग इसमें नहीं हो रहा है कृष्ण नाम का उच्चारण करने में। इसलिए कहते जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि ना संशया, एक चीज में जरूर सिद्धि है और वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन बहुत सरल है, समस्या केवल हमारे हृदय में है। हमने अपने आध्यात्मिक जीवन को क्या बना दिया है, अत्यंत कठिन बना दिया है। कारण सर्व कारण कारण कौन है अपनी समस्या का, हम स्वयं है, दूसरा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन सरल है, हम सरलता से भगवत नाम का श्रद्धा के साथ आश्रय लेते हैं और भक्तों के संग में उसका उच्चारण करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जैसे भगवान प्रकट नहीं हो सकते और कोई, इसलिए कहते परम करुणा पहु द्विजना निताय गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। महाप्रभु ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन में, चैतन्य महाप्रभु को समझना, चैतन्य महाप्रभु को समझे और महाप्रभु की जो परम शिक्षा है भगवत नाम को हम गंभीरता से ले तो सारे शास्त्र सारे अवतारों का जो ज्ञान आदि है वो हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगा। हम चाहे जैसे कहते पंगुम लंगायते गिरिम, और चाहे हम में बोलने की शक्ति नहीं है, लेकिन महाप्रभु की इतनी असीम कृपा है कि महाप्रभु की कृपा से हम बड़े बड़े प्रवचनों को हाँ सारे जीवन लोगों को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस नाम के लिए एक भक्त को चुना। कौन थे वो भक्त? सोचो, ये महाप्रभु की खासियत है। हम अपने जीवन में कुछ भी करते इवन भक्ति में आने के बाद तो सारा श्रेय मैं लेना चाहता हूं। चैतन्य महाप्रभु आए नाम का प्रचार करने के लिए, लेकिन उन्होंने सारा श्रेय किसी को दिया तो एक डिवोटी थे जिनका नाम क्या था, क्या नाम था? हरिदास ठाकुर। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु विशेषता है महाप्रभु की, बल्कि हरिदास ठाकुर की योग्यता क्या थी? दीनहीन भावना से वो अपने आप को सदैव सोचते थे कि मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हूं, नीच हूं, पतित हूं, आदम हूं, मुझ में किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं है, योग्यताओं से विहीन हूं। हाँ, लेकिन भगवान के प्रति परम श्रद्धा और सेवा की भावना थी। हाँ, तो ऐसे श्रील हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने चुना और उनको क्या बना दिया? नामाचार्य। सोचो, एक छोटे सा टाइटल लगाने के लिए हम अपना जीवन लगाते हैं, पीएचडी या क्या क्या एसडी बनाने चाहते हैं। तो लेकिन ये सर्वोत्कृष्ट उपाधि है। और ऐसे हरिदास ठाकुर की भावना क्या थी, जब शरीर त्यागने का समय आया और महाप्रभु चैतन्य रोने लगे, महाप्रभु ने कहा, हरिदास ठाकुर, मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं था, मैं दुखी था, निराश था, लेकिन जब से आप मेरे जीवन में आए हो तब से मैं सर्वाधिक सुख या आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। और महाप्रभु रो पड़े। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कितने निर्दयी हैं, आपको मेरे जीवन से ले जा रहे हैं और मैं फिर कैसे सुख की अनुभूति करूंगा। तो हरिदास ठाकुर चरणों में गिरते हैं और हरिदास ठाकुर कहते हैं, देखो श्री चैतन्य, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुझे भ्रमित कर रहे हो, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपके पास तो इतने बड़े बड़े भक्त हैं, मैं कहां छोटा सा भक्त था, मेरी क्या योग्यता है। हाँ, मुझे कहा मैं मर भी जाऊं तो कोई स्मरण नहीं करेगा कभी, ऐसा एटीट्यूड था उनका। इसलिए त्रिणादपि सु नीचे न, कैसा नीचे न, सु नीचे न, और नीचे, तरो रिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरे। हाँ, हमारे हृदय को चार छेद है, उन चार छेद को भरने के लिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं ये चार चीजें आवश्यक है, त्रिणादपि सु नीचे न, तृण के समान नीच होना, तरोरिव सहिष्णुना वृक्ष के समान सहनशील, अमानिना मान देना, चाहे हमारा कितना भी कोई हमारा अनादर आदि करे फिर भी हमें तैयार होना चाहिए उसको स्वीकार करने के लिए। कीर्तनीय सदा, ये सब चारों चीजें होगी, या हमारा कोई अपमान कर रहा है फिर भी हमें उसको सदैव मार देने की भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। जब ये होगा तभी इस जीवा पर कृष्ण नाम नाचने लगेगा, कृष्ण नाम हम वर्णित कर पाएंगे, हम बोल पाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को चुना और हरिदास ठाकुर का क्या नाम अच्छा हो रहा है, उसका मतलब है कृष्ण और वैष्णव की सेवा करने में उत्साह बढ़ रहा है। यदि सेवा करने का उत्साह नहीं बढ़ रहा है कृष्ण और वैष्णव के, तो सोचना चाहिए हरि नाम ठीक से नहीं हो रहा है। ये उसका लक्षण है जो हम अपने जीवन में देख सकते हैं। तो ऐसे हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को अति प्रिय थे। महाप्रभु ने किसी के लिए रोज प्रसाद का डब्बा कैरी नहीं किया, एक ही भक्त के लिए किया। वो कौन थे? हरिदास ठाकुर, जब वो जगन्नाथपुरी में निवास करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे तो चैतन्य महाप्रभु ने जब अपनी महाप्रकाश लीला को प्रकट किया था श्रीवास ठाकुर के घर में, तो चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों को कहा अपना कृष्ण रूप प्रकट करके कि बताओ क्या चाहिए आपको, वर मांगो। तो अलग अलग भक्त अलग अलग चीज मांगते थे, कहते थे मेरी पत्नी भक्त नहीं है उसको भक्त बनाओ, मेरे माता पिता मुझे भक्ति करने नहीं दे रहे उनके हृदय में भक्ति डालो, ऐसे बहुत सारे वर मांग रहे थे। तो हरिदास ठाकुर को कहा, हरिदास तुम कुछ मांगो। क्या मांगा होगा हरिदास ठाकुर ने, क्या मांगा होगा बोलिए, किसको याद है? हरिदास ठाकुर ने कहा, आपके जो डिवोटीज है भक्त है उनका उच्चिष्ट मुझे मिले बस, और किसी की अपेक्षा नहीं है। और वही भावना भक्ति विनोद ठाकुर ने भी व्यक्त किया अपने गीत में। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मुझे कोई बहुत बड़ा भक्त बनने की कोई आकांक्षा नहीं है, या फिर मुझे इंद्र के वहां इंद्र के समान जन्म या ब्रह्मा के समान जन्म लेने की भी कोई आकांक्षा नहीं है। मुझे ऐसे स्थान में जन्म दो जहां आपका नामोत्सव हो रहा है। कौन सा उत्सव? नामोत्सव फेस्टिवल, होली नेम का फेस्टिवल, जहां हरि नाम का उत्सव हो रहा है वहां जन्म दो। चाहे मेरे पास भौतिक रूप से कोई चीज है या नहीं है। और भी उन्होंने कहा, मुझे वो भी नहीं तो आपके वैष्णव के घर में एक कीड़े नाली के कीड़े का जन्म दे दो। वैष्णव के घर से किचन से जो उच्चिष्ट प्रसाद बहेगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा, उसको मैं ग्रहण करूंगा, थोड़ा सा पाकन और उसे क्या उच्चारण करूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भक्तों को अपने जीवन से नेगलेक्ट करके हरे नाम कदापि हम उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, वंदो जैसे इसमें आता है वंदो मोहि सावधान मते। तो वैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, एकाकी अमार नाहि पाए बल हरे नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करे। तो भक्तों की संगति परम आवश्यक है हरे नाम का उच्चारण करने के लिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को एक महानतम आचार्य बनाते हैं, नाम का आचार्य। उनको ऐसे ही नहीं कहा, सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के बहुत करीब के मित्र थे और सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर की बहुत प्रशंसा करते थे। हाँ, प्रशंसा हमें करनी चाहिए भगवान की। एक भक्ति में वृद्धि का लक्षण क्या है, भक्त के हृदय में स्वाभाविक रूप से दूसरे भक्तों के प्रति प्रशंसा का भाव जागृत होता है, स्वाभाविक रूप से। हमें तो बहुत कठिन होता है भक्तों का प्रशंसा, उनके गुण देखे उनका वर्णन करना। सनातन गोस्वामी एक दिन हरिदास ठाकुर की कुटिया में, वो दोनों एक साथ रहते थे जगन्नाथपुरी में, उनको कहा, तुम वास्तव में जगत गुरु हो। हरिदास ठाकुर के लिए क्या हो गया, ऐसे तो नहीं कहा कि टीके तो नहीं आए, क्या हो गया? सुबह सुबह सनातन गोस्वामी सुबह सुबह उनको बोलने लगे, आप तो जगत गुरु हो। अब सोचो कोई आपके पास आके बोलने लगे, आप जगत गुरु हो प्रभु जी, आज से आप शुद्ध भक्त हो गए हो, पूरे फरीदाबाद का उद्धार आप ही कर सकते हैं, तो आप कहोगे कुछ तो गलत है इसके दिमाग में। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, हाँ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपके जीवन में दो चीजें हैं। आप हरे नाम का आचरण करते हो, मीन्स हरे नाम का उच्चारण अपने जीवन में करते हो, और दूसरा दूसरों को भी क्या करते हो, हरे नाम प्रदान करते हो। इसलिए वो सर्वोत्कृष्ट हितेशी है हमारा, जो हमें क्या प्रदान करता है, हरे नाम देता है। हाँ, बल्कि जिस भक्त ने हमें सबसे पहले माला करना सिखाया उसको हमें उसका प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। हाँ, क्यों? वो डिवोटी जिन्होंने मुझे हरि नाम के लिए कहा। हाँ, तो ऐसे सनातन गोस्वामी ने कहा, आप तो आचार्य हो क्योंकि हरि नाम का आचरण करते हो, और ऐसे नहीं कि अकेले लेते रहते हो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, दूसरों को भी हरि नाम प्रदान करते हो। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के द्वारा हरि नाम की महिमा का प्रचार करते हैं। तो हमें रोज हरिदास ठाकुर का हरिदास ठाकुर से प्रार्थना या याचना करनी चाहिए। हरि नाम को लेने के लिए। महाप्रभु की यह विशेषता, जैसे मैंने कहा, सदैव दूसरों को ऊपर उठाते थे और अपने आप को उनके दास के समान समझते थे। कृष्णदास कविराज कहते हैं, भक्ति प्रेम तत्व कहे राय करे वक्ता, आपने प्रद्युम्न मिश्र सहाय श्रोता। तो प्रद्युम्न मिश्र एक भक्त थे ब्राह्मण जगन्नाथपुरी में, तो वो आ गए चैतन्य महाप्रभु के पास। महाप्रभु को कहा, बहुत दिन हो गए कृष्ण कथा नहीं सुनी, किसको किसको लगता है ऐसे, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत दिन हो गया है कृष्ण कथा नहीं सुनी, किसको लगता है? हमारे ऐसी दयनीय स्थिति है, हम सोचते हैं इतना कुछ सुन लिया है, बहुत हो गया कृष्ण कथा। वहां प्रद्युम्न मिश्र जो हमेशा डूबे रहते थे, वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो एक प्रश्न पूछा, हे चैतन्य देव, मैंने ऐसे आज ऐसे लग रहा है हृदय, ऐसे लालायित हो रहा है, क्या सुनना चाहता हूं मैं? कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु तो अपने गंभीर अवस्था में थे। जब महाप्रभु गंभीरा में रहते थे तो बड़े सीरियस रहते थे, वहां कुछ मजाक नहीं, वहां केवल श्रवण कीर्तन और अपने क्लोज भक्तों के साथ, बाकियों के साथ निकलकर नाचते गाते रहते थे, हरे नाम लेते थे, लेकिन स्वरूप दामोदर रामानंद राय लेफ्ट एंड राइट, हाँ उनके दो ऐसे भक्त थे जिनके संग में केवल सीरियस टॉक कृष्ण कथा की। तो ये प्रद्युम्न मिश्र आया और उन्होंने कहा, मुझे ना कृष्ण कथा सुननी है। महाप्रभु ने अपनी आंखें बड़ी की, उन्होंने कहा, अरे मैंने संसार में ऐसा देखा ही नहीं व्यक्ति जो सुबह सुबह उठ के आ जाए, उठ के सोचते प्रभु जी चाय बनाओ, बिस्किट्स लेके आओ, या बहुत ही कुछ कुछ हम पूछते रहते सुबह उठते ही। तो यहाँ प्रद्युम्न मिश्र उठते कि नहीं, महाप्रभु के पास गए, कहा मुझे कृष्ण कथा सुननी है। महाप्रभु ने कहा, इस संसार में महाभाग्यवान कोई जीव है तो तुम हो, क्योंकि बहुत जन्मों के बाद और बहुत सुकृति से किसी व्यक्ति के हृदय में ये तीव्र लालसा जागृत होती है कि मुझे कृष्ण कथा सुननी है। इतनी लालसा, ये इच्छा आना ही भगवत प्राप्ति का एक लक्षण है, भगवत प्रीति का एक लक्षण है, आचार्यगण कहते हैं। तो महाप्रभु बहुत विनम्र थे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आमी कृष्ण कथा नाही जानी, मैं कृष्ण कथा जानता नहीं हूं। अरे जो कृष्ण कथा के भंडार है, नाम रूप गुण लीला के मूर्तिमान स्वरूप है, वो आज कह रहे हैं कि मैं कृष्ण कथा नहीं जानता। महाप्रभु नहीं जानते तो कौन जानता है फिर? बल्कि महाप्रभु आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान का आचरण नहीं करते हैं जगन्नाथपुरी में, वो आचरण करते हैं आचार्य का आचरण। जगन्नाथ नवदीप में उन्होंने ये स्थापित नहीं किया कि मैं आचार्य हूं, इसलिए कहते कलयुग में गुरु साधु और आचार्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु ये तीनों बने, गुरु भी बने, साधु भी बने और आचार्य भी बने। ये लीला उन्होंने जगन्नाथपुरी में प्रकट की। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो आचार्य हैं, तो महाप्रभु ने कहा, देखो मुझे तो कृष्ण कथा समझ में नहीं आती और बोलना भी नहीं आता, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मैं एक ऐसे भक्त को जानता हूं जो कृष्ण कथा के क्या है, भंडार है। इस भक्त ने पूछा, अरे मैं तो महाप्रभु से डायरेक्ट सुनना चाहता था। गीता हम किससे सुनना चाहते हैं? किससे? कृष्ण से सीधा। ये भक्ति सीधा कृष्ण के था, कृष्ण से ही सुनना चाह रहा था। लेकिन कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, एक भक्त महाप्रभु वहां सिखाते हैं परंपरा से सुनो, डायरेक्ट कृष्ण से सुनने का प्रयास मत करो। तो वहां चैतन्य महाप्रभु कहते, मैं एक भक्त को जानता हूं जिनका नाम है रामानंद राय। क्या नाम है? रामानंद। भक्तों के नाम लेना कृष्ण के नाम लेने के समान है। प्रश्न मत उठाइए। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते वृंदावन नाम लेना कृष्ण के नाम लेने के समान है। तदीयानाम समर्चनम, ये सिद्धांत लागू होता है। तो यहाँ रामानंद राय के पास भेज दिया प्रद्युम्न मिश्र को, मतलब महाप्रभु ने क्या किया, अपने से भी बढ़कर उनको स्थापित किया रामानंद राय को। कृष्ण कथा प्रेम तत्व भक्ति तत्व की व्याख्या करने में कोई भक्त निपुण है तो वो रामानंद राय। इसलिए सन्यासी होकर दक्षिण भारत में जब राजमुंद्री चैतन्य महाप्रभु गए तो वहां उन्होंने भक्ति तत्व को सुना, सन्यासी होकर एक गृहस्थ व्यक्ति से सुना। कौन किससे सुना? रामानंद राय से। महाप्रभु ने स्थापित किया कि चाहे कोई किबा शूद्र किबा न्यास किबा विप्र, मतलब कोई विप्र हो शूद्र हो सन्यासी हो, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। इससे फर्क नहीं पड़ता गुरु कौन है, जो कृष्ण के तत्व को जानता है, कृष्ण के सिद्धांत आदि को जानता है, वो वास्तव में गुरु है। जो कृष्ण देने के लिए तत्पर है, जिसके पास कृष्ण है वो गुरु है। तो महाप्रभु प्रद्युम्न मिश्र के साथ रामानंद राय से सुनते हैं, हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास। तो हरिदास ठाकुर के द्वारा महाप्रभु ने क्या सिखाया? नाम महिमा। तो भक्तों को हरिदास ठाकुर के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से नाम के बारे में बहुत कुछ पूछा। ये जो 10 अपराध है वो महाप्रभु ने, एक बार महाप्रभु सुबह सुबह उठे समंदर में गए स्नान करके आए और आकर हरिदास ठाकुर के सिद्ध गोकुल में गए। वो हरिदास ठाकुर बैठे थे, उनको कहा हरिदास थोड़ा सा नाम महिमा का वर्णन करो। कहते आपका अवतार उसके लिए हुआ है, मुझे क्यों बोल रहे हो, बोलो ना। तो महाप्रभु कहते मैं तो जानता नहीं हूँ, और विशेष रूप से ये सारे 10 नाम अपराध और 10 सावधानी मुझे समझ में नहीं आता, हमें अभी भी नहीं आता समझ में। तो महाप्रभु ने एक के बाद एक ये सारे प्रश्न पूछे। हरिदास ठाकुर बताओ पहला नाम अपराध क्या है, तो वो उन्होंने बड़ा विस्तार से समझाया, दूसरा तीसरा ऐसे सारे समझाए। फिर भक्ति विनोद ठाकुर आगे चलकर ऐसे आचार्य हुए, ये जो उनका संवाद था ये किसी जगह लिखित रूप में नहीं था, तो भक्ति ठाकुर के हृदय से प्रकाशित हो गया और भक्ति विनोद ठाकुर ने उस ग्रंथ की रचना की श्री हरिनाम चिंतामणी, जिसमें महाप्रभु प्रश्न पूछते जा रहे हैं, हरिदास ठाकुर क्या दे रहे हैं, उत्तर ही उत्तर दे रहे हैं नाम महिमा के। तो ऐसे महाप्रभु हरिदास ठाकुर से नाम महिमा, सनातन गोस्वामी से फिलोसॉफी सिद्धांत को स्थापित करते हैं, और श्री रूप द्वारा प्रजेर प्रेम रस लीला के बुझिते पारे गंभीर चैतन्य लीला। कहते कौन समझ सकता है चैतन्य महाप्रभु की इस खेला या लीला को, कि उन्होंने सनातन गोस्वामी से भक्ति सिद्धांत और रूप गोस्वामी से क्या सिखाया, प्रेम रस तत्व की व्याख्या। इसलिए रूप गोस्वामी को एक उपाधि है, उनको रसाचार्य कहते हैं। कौन से आचार्य? रसाचार्य। तो हमारे आचार्य बहुत यूनिक हैं, विशेष हैं। तो ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु नामाचार्य हरिदास ठाकुर को ऐसे ही आचार्य नहीं बनाया, उनमें वैसे गुण थे। हाँ, क्या गुण था हरिदास ठाकुर में? सोचो आपकी पिटाई हो, हाँ पिटाई इसलिए हो कि माला मुझे दे दो, माला दोगे, जब माला दोगे तो पिटाई बंद हो जाएगी। हाँ तो कितने लोग देंगे माला? सारे देंगे, आप परमात्मा चैत्य गुरु प्रभु सबसे पहले देंगे। तो वहां हरिदास ठाकुर के ऊपर ऐसे ही बात आई, क्यों हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, सारे विपदाओं का समस्याओं का कष्टों का जड़ कौन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। भक्ति में आने के पूर्व लगता है कि कितना सब कुछ मेरा मन कंट्रोल में है और सब कुछ इतना सुव्यवस्थित है और कोई मेरे हृदय में गंदगी नहीं है, कोई अनर्थ महसूस नहीं होते। महसूस होते काम क्रोध दो मोह मद मात्सर्य आदि,
कुछ नहीं महसूस होता। जैसे भक्ति में आते हैं और ये लोग वो आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल का सेमिनार करते हैं, इसलिए नहीं करते कि मन को कंट्रोल कैसे करना है, वो लोग इसलिए करते हैं कि आपको पता चले कि आपका मन क्या है, अनकंट्रोल है, फिर आपको पूरे जीवन तक से करना पड़ता है हरि नाम, ताकि मन एक दिन क्या हो जाए, कंट्रोल में हो जाए। तो ऐसी हमारी दयनीय स्थिति है जो बहुत ही कठिन है। तो हरि नाम जब जीवन में आया तो अभी महसूस होता है कि बहुत सारे कष्ट हैं, लगता है कि नहीं लगता, बहुत विपदा है, मन भी हमेशा भागता रहता है, इच्छा नहीं होती हरि नाम करने की, लेकिन हरि नाम ही एकमात्र उपाय है हाँ इस चीज से बाहर निकलने का। इसलिए हरिदास ठाकुर के जीवन में कष्ट आए, उनको 22 बाजार में मारा जा रहा था, सोचो आपको उठा गया 37 की होड़ा मार्केट में, हाँ लेके आपकी कपड़े उतार कर उससे मारा जाए कोड़ों से, और कहा जाए क्यों हरि नाम ले रहे हो, हम कहेंगे नहीं लूंगा अभी से छोड़ देता हूं। अब सोचो, जैसे जब भी मैं शुरुआत में हरिदास ठाकुर का पास टाइम पढ़ता था, हम दिल्ली टेम्पल में रहते थे, तो जब भी वर्णन आता था ना 22 बाजारों में मारा गया, तो मुझे बाजार केवल सेंट्रल मार्केट याद आता था, सोचता था हम हर हफ्ते हरिनाम करने जाते थे, सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर इतना बड़ा और इतना भरा रहता। तो वैसे ही हरिदास ठाकुर को मार्केट में ले गए तो मैं सोचता था इससे ज्यादा भरा होगा, लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट से ज्यादा भरा होगा जहां हरिदास ठाकुर को मारा जा रहा है, इतना मारा जा रहा था। हाँ, लेकिन हरिदास ठाकुर के हृदय में जो उनको मार रहे थे उनके प्रति लेश मात्र भी शत्रुता का भाव नहीं था, ऐसे नहीं कि मैं अभी रिवेंज दिखाता हूं। कृष्ण लीला में एक अद्भुत चीज है, दशंसकर में हाँ ये सारे आसुर है ना, आसुर गण, वो आसुरों में बड़ा आपस में प्रेम का भाव है, हाँ एक आसुर को मारा तो दूसरा आसुर रिवेंज लेने के लिए आ जाता है, हाँ बकी को मारा, पूतना को मारा तो उसका भाई बकासुर आया, वहां नरकासुर को मारा तो ये द्विविध है आसुर मंकी के रूप में आया था, वो आया उसका रिवेंज लेने के लिए। तो वैसे ही हरिदास ठाकुर के हृदय में किंचित भी वो नहीं था कि मैं इसका बदला लूंगा, हाँ उशाप दे दूंगा। तो लेकिन हरिदास ठाकुर कहते हैं जब उनको इतना मारा जा रहा था, हरिदास ठाकुर कहते हैं ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, हाँ कृष्णा आप इनको क्या करो, क्षमा करो, हम अपने जीवन में छोटी सी घटना हो जाती तो उसके लिए पूरा योजना बनाते, भक्तों को कैसे बदला लो उसका, हाँ तोड़ फोड़ दो उसका जीवन, हाँ लेकिन हरिदास ये नाम का विशेषता है, हृदय इतना विमल कर देता है हाँ जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। फिर हरिदास ठाकुर को पिटाई हो रहे थे तो उनके मुख से ये शब्द निकले, खंड खंड होय जदि जाओ मोर प्राण, तबुतना बदलया में छाड़ी हरि नाम, मेरे शरीर के खंड खंड हो जाए, छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, कितने बड़े छोटे छोटे, तभी भी मैं हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा। ये है हरि नाम की प्रतिज्ञा है, प्रगाढ़ आकर्षण, प्रगाढ़ आसक्ति। ऐसे हरिदास ठाकुर 300,000 नामों का उच्चारण किया करते थे, 192 राउंड्स। तो ऐसे हरिदास ठाकुर विशेष है, इतना अनुराग, बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरिदास जब तुम्हें मारा जा रहा था ना तब मैं वहां था और मैं चक्र लेकर आया था जो मार रहे थे उनको उड़ाने के लिए, सिर काटने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी, तुम इतना उनसे मार खा रहे हो फिर भी कहते उनको क्षमा कीजिए कृष्णा, उनको क्षमा कीजिए, इसलिए कहते मैं मारा नहीं, नहीं तो मुझे गुस्सा आता है जब कोई भक्तों पर क्या करता है, हाँ इसलिए कहते हैं डिवोटीज के आसपास हमेशा चैतन्य भागवत में आया है
चैतन्य महाप्रभु जब एक बार नदी में जा रहे थे नाव के ऊपर, तो बाकी भक्त बहुत भयभीत हो गए कि उस नदी के पद से जाने में बहुत सारे शत्रु चोर उचक्के होते हैं जो लूटते हैं, का मार कर काट देते हैं। महाप्रभु ने कहा भय की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे मेरे डिवोटीज, आपको पता नहीं है जब भक्त जहां जहां जाता है उसकी रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र भी उसके साथ जाता है। तो भक्तों ने कहा फिर ठीक है महाप्रभु, हम चलेंगे आपके साथ। तो महाप्रभु वहां बताते हैं सुदर्शन हमेशा भक्तों के साथ होता है रक्षा करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर को जब मारा जा रहा था तो चैतन्य महाप्रभु वहां उपस्थित हो गए। महाप्रभु देख रहे, जब चाबुक पड़ रही थी जोर से तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पीठ पर जाकर ऐसा पीछे से आलिंगन किए हुए थे और सारे चाबुक किसे लग रहे थे? किसे? महाप्रभु को। तो कोई शंका उत्पन्न हो सकती है। हरिदास ठाकुर प्रश्न पूछ सकते, मैंने तो आपको नहीं देखा। तो उस दिन महाप्रकाश लीला में नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु अपना पीठ दिखाते हैं। हरिदास देखो मेरा पीठ, पीठ पर देखो कितने सारे निशान है। और हरिदास ठाकुर को सारे निशान दिखाई दिए चाबुक के, पूरा महाप्रभु का पीठ क्या हो गया है? लाल हो गया है, व्रण आ गए हैं। इस प्रकार से महाप्रभु का इतना प्रेम है हरिदास ठाकुर से। हरिदास ठाकुर जब महाप्रभु ने संन्यास लिया, संन्यास लेकर शांतिपुर से निकले, पहली बार घर से बाहर निकले महाप्रभु अद्वैत आचार्य के, तो सारे घर में जितने भक्त थे जोर जोर से रोने लगे। कैसे रोने लगे? जोर जोर से। और महाप्रभु ने कहा नहीं, अभी नहीं जा सकता, बाहर वापस आ गए। दूसरी बार भी वैसे हो गए। तीसरी बार महाप्रभु ने कहा नहीं, कोई आ सकती नहीं। अभी वैराग्य का एक लक्षण है, मुंह आगे किया तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वहां पीछे चाहे रोए या पीटे। हम जब ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन नहीं किया था तो शुरुआत में बड़ी तगड़ी क्लासेस होती थी, हमें ऐसा उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया था कि बस जीवन समर्पित करना है, ब्रह्मचारी बनना है। तो एक क्लास था जिसमें था, वही व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर सकता है जो व्यक्ति अपने माता पिता का हृदय तोड़ने के लिए तैयार है। तो हमने कहा ये तो बड़ा कठिन है, लेकिन इतनी सारी क्लासेस सुन सुन के ये भाव जागृत हो गया कि तोड़ेंगे तो हृदय किसका? माता पिता का, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें प्रेम अपनी माँ से होता है। 9 महीने उसके पेट में रहे, भारत पिता से इतना आपुल की नहीं है, इतना लगाव नहीं है। किससे लगा होता है? इसलिए हम कुछ लग भी जाते हैं, गिरते तो क्या चिल्लाते हैं, क्या बोलते हैं? माँ। तो स्वाभाविक है। और चैतन्य महाप्रभु को भी अपनी माँ से बहुत प्रेम था। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, संन्यास लेके शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर में पहली बार देखा सच्ची माता ने, तो इतने लंबे लंबे बाल थे, सुवर्ण केश, और वो सारे गायब हो गए, मुंडन हो गया है और सैफरन कपड़े धारण किए हैं। उन्होंने सोचा मेरे बेटे को क्या हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने माँ को देखा संन्यास लेने के बाद, और माँ ने महाप्रभु को देखा, सच्ची माता ने। चैतन्य माँ वो हार हो रही थी और महाप्रभु यहाँ रोने लगे आमने सामने, जाके दौड़ के उसके गोद में बैठ गए, इतने बड़े 24 साल के गोद में बैठे उनका आलिंगन किया, का महा हे माँ, देखो मैं पागलपन में संन्यास ले लिया, यदि तुम आज कहो कि दंडा छोड़ दो, कपड़े उतार दो, मैं तैयार हूं। ऐसे महाप्रभु का माँ के प्रति ऐसा प्रेम का भावना जागृत हो गया था। लेकिन फिर माँ बहुत बुद्धिमान थी, उन्होंने कहा नहीं, हाँ ये उचित है, तुम जगन्नाथपुरी निवास करो। तो महाप्रभु जब निकले फिर ये सारे लोग फिर से रोने लगे, अद्वैत आचार्य इतने जोर जोर से रोने लगे, कृष्णदास कविराज कहते। फिर चैतन्य महाप्रभु पीछे मुड़के नहीं देखा, सीधा जगन्नाथपुरी की ओर देखा और दौड़ते हुए जा रहे। तो हरिदास ठाकुर भी रो रहे थे। हरिदास ठाकुर महाप्रभु के पीछे रोते हुए गए, महाप्रभु के वस्त्र पकड़े, कहते आप मुझे अपने साथ ले जाओ ना, मुझे क्यों यहाँ छोड़ा है? महाप्रभु कहते नहीं, तुम बाद में आना। फिर बाद में भक्तों के साथ जब नवद्वीप के भक्तों की पहली जगन्नाथ यात्रा थी, जगन्नाथपुरी की विजिट, उसमें जब ये डिवोटीज गए तो सारे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु मिल रहे थे। महाप्रभु को याद आए, किसकी याद आए? किसकी? हरिदास ठाकुर की। कहा में सबको मिला कि हरिदास आया कि नहीं आया जगन्नाथपुरी? दूसरे भक्त ने कहा आया है, लेकिन वो इतना विनम्र है, वो उस जो बड़ा रोड है ना जगन्नाथपुरी का गंभीरा से, अभी तो बहुत सारे बिल्डिंग के घर बने महाप्रभु का, देखो देखो वहां उस बड़े रोड पर देखो, वहां गिरा हुआ है, वहां से आपको दंडवत मार रहा है। हरिदास ठाकुर ने सारे भक्तों को छोड़ दिया, महाप्रभु ने साइड हो जाओ, मैं अभी किसके पास जा रहा हूं? हरिदास ठाकुर के पास। महाप्रभु गए, हाँ हरिदास ठाकुर को उठाया, हरिदास ठाकुर का आलिंगन किया, और हरिदास ठाकुर ने कहा मैं कहाँ निवास करूँ, आपके निकट रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं नीच मुसलमान परिवार में मेरा जन्म हुआ है, नीच हूँ, आदम हूँ, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। महाप्रभु ने कहा तुम्हारे लिए मैंने तुम आने से पहले ही जगह निर्धारित कर दी है। महाप्रभु ने सबसे नजदीक का स्थान, अपने जो निवास था महाप्रभु का, उसके नजदीक का स्थान एक था, हाँ, जिसको आज सिद्ध बकुल कहते हैं, वहां उनको निवास दिया। और महाप्रभु चाहे किसी भक्त को पुरी में रोज मिले या ना मिले, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं था नामाचार्य हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ना मिलते हो। महाप्रभु का जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या थी उसमें फिक्स था, हरिदास ठाकुर को इस समय मिलना है। महाप्रभु सुबह उठते समंदर स्नान करते थे, फिर जगन्नाथ दर्शन के लिए गोविंद के साथ जाते थे, फिर वहां जगन्नाथ का दर्शन आदि करके कुछ प्रसाद लेकर हरिदास ठाकुर के पास आते थे, उनसे चर्चा करते थे, हम फिर जाते थे समंदर स्नान करके दोपहर को फिर आके अपने बाकी भक्तों से मिला करते थे। तो ऐसे हरिदास ठाकुर महाप्रभु को प्रिय थे। क्यों प्रिय थे? क्योंकि उन्होंने नाम व्रत अपने जीवन में स्वीकार किया था आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक। हाँ, इसलिए हरिनाम को जो भजता है, कृष्ण का भजन, कृष्ण की सेवा हरिनाम के माध्यम से जो करता है, वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। हरिनाम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर, जय जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। हरिनाम अत्यधिक मधुर है। जो व्यक्ति इस हरिनाम के द्वारा कृष्ण का भक्ति करता है, उनकी पूजा करता है, वो वास्तव में सबसे अधिक चतुर व्यक्ति है। हम भी बहुत चतुर बनना चाहते हैं उन भक्तों के समाज में भी, तो चतुरता इसमें है कि हम क्या करें, नाम को पकड़ के रखे अपने जीवन में, नाम व्रत ले। हरिदास ठाकुर का नाम व्रत था, और दूसरे एक आचार्य थे उन्होंने भी नाम व्रत लिया था। कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1905 में जब उनकी आयु 31 साल की थी, तब उन्होंने एक नाम व्रत लिया था। ऐसे नहीं कि उन्होंने लिया था पहली बार, उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने भी नाम व्रत लिया था। नाम व्रत मीन्स अधिक से अधिक नामों हरि नाम का उच्चारण करना, फिक्स राउंड। हाँ, या कुछ जैसे हम एकादशी में करते हैं, तो अधिक से अधिक हरि नाम उच्चारण करने का टारगेट लेना, जिसके द्वारा नाम के प्रति हमारा जो अनुराग है वो वृद्धित होता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कितना नाम लेने का व्रत लिया था? एक व्रत था उनका शतकोटि नाम यज्ञ, 100 करोड़, मतलब रोज 3 लाख नाम लेना है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने उस माला पर जप करना शुरू किया जिस माला पर नाम व्रत भक्ति विनोद ठाकुर ने किया था। इतना पावरफुल भक्ति विनोद ठाकुर जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, शिक्षा गुरु, उनके पिता भी थे, उनकी माला पर इन्होंने अपना नाम व्रत शुरू किया और कहा चैतन्य महाप्रभु का विग्रह आपने सामने रखा, चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थल में। और वहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अभी युवा थे, 31 साल के आयु थे, और वहां एक घास की कुटिया बनाकर उसके अंदर रहने लगे। बारिश आती थी तो पानी गिरता था, लेकिन उठते नहीं थे, छाता भी रखा था, और उनको उन्होंने वो ग्रीन कलर यूज करते थे सारा। किसी ने पूछा भक्ति सिद्धांत सरस्वती आप एक ग्रीन कलर क्यों यूज करो, पेन भी रखते तो ग्रीन, शॉल भी रखते थे तो भी ग्रीन। हाँ, तो कहते विरह का ये क्या कह सकते हैं, विरह का चिन्ह है, लक्षण है, या ये प्रतिनिधित्व करता है एक्सप्रेसिंग विरह भावा।
विरह भाव को एक्सप्रेस करता है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गंगा के किनारे ये व्रत लिया था अपने जीवन में, और जिसके कारण उन्होंने बाद में कृष्ण भावना का अत्यधिक प्रचार किया। और श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी हम देखते हैं, जब वो वृंदावन में थे तो वो राधा दामोदर मंदिर में नित्य रूप से हरि नाम का उच्चारण रूप गोस्वामी की समाधि के सामने किया करते थे। तो ऐसे महान महान आचार्य गण हैं जिन्होंने हरि नाम का उच्चारण किया। और ये नाम व्रत लेने से, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब अपनी पत्नी विष्णु प्रिया को छोड़ते हैं तो विष्णु प्रिया भी अपने जीवन में नाम व्रत स्वीकार करती है, वो भी हरि नाम का उच्चारण करती है, क्योंकि अच्छा हरि नाम हमें बढ़ाना है तो अधिक से अधिक हरि नाम हमें करने का प्रयास करना चाहिए भक्तों के संग में। जिससे क्या होगा, पहली चीज होगी कि हरि नाम के प्रति हमारा जो अफेक्शन है, स्नेह है या अनुराग है वो बढ़ता है, हरि नाम के प्रति नाम रुचि आती है, और जो नाम है उसमें हमारा अटेंटिवनेस वो वर्धित होता है। तो इसलिए कवि कर्णपुर कहते हैं कि ऐसा हरि नाम का जो व्रत है हमें नियमित रूप से लेना चाहिए, जिसके द्वारा नाम में हम अमृत अनुभव करेंगे। कवि कर्णपुर कहते हैं कि भक्ति अमृत युक्त होती है या फिर अमृत से रहित होती है। हमारे भक्ति में जीवन में कभी कभी बहुत आनंद आता है, कभी कभी इतने निरस हो जाते हैं, लगता है कि क्यों मैं जब करूं, छोड़ दिए सारा भक्तों का संग आदि। तो उसके लिए परम आवश्यक है कि हम भगवान के नामों का उच्चारण भक्तों के संग में, गुरु वैष्णव के मार्गदर्शन में अधिक से अधिक करें, तो हम तीव्रता से शुद्ध हो सकते हैं। और इस जिह्वा को भी क्या है, कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। तार मध्य जिह्वा आति लोभ माया सुदुर्मति। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, ये जो जिह्वा है उसके दो फंक्शन है, एक तो ये टेस्ट करती है और दूसरा वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट मोड में होता है ना मोबाइल, आता रहता है वैसे ही बजता रहता है, वैसे ये जिह्वा हमेशा बजती रहती है, कुछ ना कुछ खाती रहेगी या कुछ ना कुछ बोलती रहेगी। इसलिए इस जिह्वा को, जिह्वा पर विजय प्राप्त करना है तो इस जिह्वा के द्वारा कृष्ण के नामों का उच्चारण करना होगा, क्योंकि ऐसी जिह्वा जिसकी तुलना श्रीमद् भागवतम में मेंढक के जिह्वा से की है। जैसे इस बारिश के दिन आते हैं तो मेंढक बाहर निकलते और ट्राव ट्राव करते रहते हैं, वैसे ही सुबह हो जाती है, थोड़ा बहुत जप करते जैसे अपने बिल से बाहर निकलते, घर क्या है हमारे लिए बिल है, बिल से बाहर निकलते तो पूरे दिन मेंढक की तरह आवाज करते रहते हैं। तो ऐसी जिह्वा हमें कृष्ण के सबसे नजदीक ले जा सकती है और कृष्ण से सबसे अधिक दूर लेके जा सकती है। इसलिए जिह्वा का उपयोग हमें इस भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए करना होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं जिह्वाग्रे वसते लक्ष्मी, जिह्वाग्रे मित्र बांधवा। जिह्वा के आगे लक्ष्मी निवास करती है, जिह्वा के कारण ही मित्र है, जिह्वा के कारण ही बांधव है, जिह्वा के कारण क्या है, शत्रु है। जिह्वाग्रे बंधनम प्राप्त, इस जीव के द्वारा हम संसार में बंधित हो जाते हैं। और जिह्वाग्रे मरणह दुरह, जिह्वा के द्वारा मृत्यु को भी क्या कर सकते हो, आप दूर रख सकते हो। तो ये जिह्वा बड़ी खतरनाक है, इंस्टेंट रिएक्शन हमें मिलती है। किसी को गाली देके देखो, जैसे हम सुन रहे थे, जिह्वा बहुत पावरफुल है, किसी को भी तोड़ सकती है, किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकती है। जैसे द्रौपदी है, इतनी अच्छी खासी द्रौपदी, इतना अच्छा खासा महल नया नया बनाया था, बेचारे दुर्योधन जी वहां आगमन उनका हुआ और वो ऊपर खड़े थे, अब इतना बोलने की क्या आवश्यकता है, ठीक है ईर्ष्या है तो है, लेकिन वाणी में क्यों लाना है। वो दुर्योधन जी वहां आ ही रहे थे और इतना
इंद्रप्रस्थ इतना अद्भुत रूप से मय दानव ने निर्माण किया था, जल को स्थल, जलीय स्थल समझना बड़ा कठिन था। दुर्योधन वैसे भ्रमित और ईर्ष्या आदि होती है तो कुछ दिखता नहीं है व्यक्ति को, किसी से आप द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं तो उसके हजारों गुण हो, कुछ समझ में नहीं आता, हाँ दिखता नहीं है। तो ये इनको स्थल या जल समझ में नहीं आ रहा था। जब स्थल आता था तो जल की भांति रुक जाते थे, जल अभी पानी है शायद, जब पानी आया तो इनको दिखाई नहीं दिया, इनको लगा क्या है, स्थल है, कूद पड़े उसमें, कूद तो नहीं पड़े लेकिन गिर पड़े। तो वहां ऊपर से द्रौपदी महारानी देख रही थी, द्रौपदी ने देखा और अपने जिह्वा को सेवा में लगाया। क्या बोला उसने, इतना अच्छा खासा उसका लाइफ था, जब कर रहे थे सब कुछ कर रहे थे, थोड़ा सा मिसयूज, टंग जैसे नाव होती है ना उसमें भी जिह्वा होती है नीचे, अब मायापुर जाते हैं तो वो उसको टर्न करता है नाव को, तो नीचे छोटा सा जिप होता है लोहे का, उस नाव को उसके द्वारा पूरा यू टर्न लेता है नाव। वैसे हमारा भक्तिमय जीवन हो या कोई भी जीवन हो वो पूरा यू टर्न ले सकता है, हाँ केवल जिह्वा का दुरुपयोग करने से, थोड़ा सा। क्या बोला उसने, हाँ अंधे का पुत्र अंधा ही है, जैसे बोला तो फिर महाभारत और एक्टिव हो गया, पहले धीरे धीरे से जा रहा था, सारी चीजें फास्ट हो गए, हाँ तो ऐसी स्थिति है। इसलिए दो आंखें दी हैं, एक जीभ दी है, पहले देखे ठीक से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो भगवान ने इतनी सुव्यवस्था की है, बोलना है तो हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कि संसार रूपी वृक्ष को ये जिह्वा रूपी कुल्हाड़ तोड़ सकती है। कोई बड़ा वृक्ष होता है जंगल में गांव में तो किसान जाता है छोटा सा कुल्हाड़ लेकर जाता है, कुल्हाड़ पता है ना एक्स, जाता है छोटे से टक टक तोड़ देता है पूरा बड़े वृक्ष को। वैसे ये जिह्वा कि संसार रूपी जो इतना बड़ा वृक्ष है जिसमें हम फंसे हैं उसको टक एक झटके में तोड़ सकता है जिह्वा, या तो हमारा जीवन काट सकता है। शिशुपाल, शिशुपाल का जीवन याद है, जिह्वा का दुरुपयोग का अच्छा लक्षण है, जीवन भर गालियां देता रहा। हम जैसे कीर्तनिया सदाहरी है ना, वैसे शिशुपाल क्या था, कीर्तनिया नहीं गालियां सदाहरी। भगवान कृष्ण को गालिया, जन्म होते ही कृष्ण की निंदा, गालिया देना रहा नहीं गया। भर सभा में युधिष्ठिर ने स्थापित किया अग्र पूजा राज से यज्ञ में किसी की होगी तो कृष्ण की, भीष्म आदि ने अनुमति प्रदान की, उस सभा में तलवार लेकर अपने जिह्वा रूपी तलवार लेकर खड़ा हो गया, गालिया देता रहा। भगवान ने कभी बहुत हो गया आपकी जिह्वा नहीं काटूंगा, क्या काटूंगा गर्दन ही काटूंगा, जिह्वा अलग हो जाएगी। कैसे हमारा जीवन भी है, जीवा हमारे हाथ में है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है वह हमें सोचना चाहिए। ना एक जगह में पढ़ रहा था, टंग इज डेडली पॉइजन, कि जो जीवा है वो भयानक मृत्युदायक विष है। हाँ तो ऐसे जीवा से हमें सावधान होना चाहिए, इस जीवा को भी कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। और कहाँ नियुक्त कर सकते कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के नामों का उच्चारण करने में। इसलिए बड़े बड़े आचार्यगण इस जीव के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। एक स्तोत्र है बिलो मंगल ठाकुर के द्वारा, उन्होंने अपने जीव के पास जिह्वा को हाथ जोड़े, किसको हाथ जोड़े, आपने कभी हाथ जोड़े जिह्वा को, नहीं घर में एक दूसरे को तो हाथ जोड़े हुए हैं लेकिन जिह्वा को हाथ जोड़े नहीं, अभी आज से जीव को हाथ जोड़िए। वो कहते हैं जीव के लिए, वो कहते हैं बहुत सारे श्लोक उन्होंने बोले हैं, जिह्वे सदैव भज सुंदराणि नामानि कृष्ण श्रमनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। वो कहते हैं जिह्वा, हे मेरे जीव,
हाँ क्या करो, जिभे सदैव भज सुंदराणी, अरे मेरी जीव हाँ सुंदर रूप से इस भगवान के नामों का उच्चारण करो। नामानि कृष्णानि मनोहराणि, इतने मन को भी हरित करने वाले ऐसे कृष्ण के नाम है सुंदर। हम वो क्या करते हैं, कौन से नाम है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधव, इन नामों का उच्चारण करो। दूसरे श्लोक में वो कहते हैं, गोपी पते कंस रिपो मुकुंद लक्ष्मी पते केशव वासुदेव जिभे पिबस्वामृतमेत एव गोविंद दामोदर माधवेति। हे मेरी जीव, इस अमृत को पियो, गोपीपते नाम का अमृत, कौन सा नाम बोला कृष्ण का, गोपीपते, कंस रिपो मुकुंदा लक्ष्मीपते केश वासुदेव जिभे, हे मेरे जीव इसको पियो, इस अमृत को। और एक श्लोक को मैं पढ़ता हूँ फिर विराम देता हूँ। भजस्व मंत्रं भवबंध मुक्ते जिभे रसके सुलभं मनोज्ञा द्वैपायनादेर मुनिभि प्रजप्तं गोविंद दामोदर माधवेति। हे मेरे जीवा, द्वापायन आदि मुनि भी इस नाम का उच्चारण करते हैं। हे मेरी जीव, तुम क्या करो, कृष्ण के इन परम नामों का उच्चारण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, अनन्य चेता सततम योमां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान उस व्यक्ति के लिए सुलभ है जो नित्य रूप से हरि नाम का उच्चारण करता है। तो नाम इतना पावरफुल है कि सर्प का विष भी उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखाता। हम कुछ महीने पहले वहां गए थे, कनाई नटशाला बंगाल में एक स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए थे, तो वहाँ इस्कॉन का टेम्पल है, तो वहाँ एक ब्रह्मचारी रहते थे, तो वह हमें कई सारे लीलाएं सुना करते थे। उन्होंने कहा कि कनाईनटशाला जो आश्रम है गंगा के किनारे, बहुत सुंदर स्थान है। कनाईनटशाला मतलब वो वृंदावन है, कानाई का स्थान। तो वहाँ वो कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी थी ये इस्कॉन को देने से पहले एक बाबा जी यहाँ रहा करते थे, एक साधु, और वो इतना नाम में उनका अनुराग था, 24 घंटे उनकी जीवा कृष्ण नाम का उच्चारण करती थी। और एक दिन उनको सांप ने काटा, तो हमने कहा बाबा जी ने शरीर त्याग दिया होगा, बाबा जी ने नहीं करे, सांप ने शरीर त्यागा। क्यों, क्योंकि इतना नाम। हाँ, चैतन्य चरितामृत में भी महाप्रभु के एक भक्त का वर्णन आया है, वो भी ऐसे ही थे। कृष्णदास कविराज आदि लीला में कहते इतना नाम लिया करते थे कि सर्प का विष भी उनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखाता था। तो हरि नाम इतना अधिक प्रभावशाली है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, न अनुराग, कोई मेरी श्रद्धा नहीं है, अनुराग नहीं है। लेकिन भक्तों के संग में हरि नाम का उच्चारण करते रहने से हमारी श्रद्धा वृद्धिंगत होती है, और फिर हरि नाम हम सही रूप से ले पाते हैं। भगवान से आप चाहे कोई प्रार्थना करें या ना करें, एक प्रार्थना रोज करनी चाहिए, कृष्णा आपके भक्तों के संग में मैं हरि नाम का उच्चारण कर पाऊं। इसलिए हाँ वो कहते हैं कि भगवान का नाम और भक्तों का संग, ये दो ही चीजें हैं जो इस भौतिक संसार से हमें निकाल सकती हैं, जिसके लिए वो प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलयुग धर्म हरि नाम संकीर्तन के श्रील प्रभुपाद के नित्य गौर प्रेम।